पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से भाग जाती है और मिशा दुल्हन बनती है। इस अध्याय में मिशा की मेकअप आर्टिस्ट द्वारा मेकअप किया जाता है और सुमन शादी के लिए तैयार होती है। धीरज सुमन को किस करता है। परी और अर्जुन उन्हें देखते हैं। सुमन शर्मिंदा हो जाती है। धीरज बच्चों पर गुस्सा करता है। परी और अर्जुन भाग जाते हैं। सुमन और धीरज अलग हो जाते हैं। गार्डन को खूबसूरती से सजाया जाता है। शादी का मुहूर्त शुरू होता है। रणवीर रुद्र को फोन करता है और धनराज पूनम को मिशा को लाने के लिए कहते हैं। चैप्टर 54। अब आगे। पंडित जी की बात सुनकर रणवीर जी सर हां में हिला, रुद्र को फोन लगा देते हैं। वहीं धनराज जी अपनी बहू पूनम को मिशा को लाने के लिए बोलते हैं, जिसे सुन पूनम सर हां में हिला, मिशा को लेने के लिए दुल्हन के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में, रुद्र जो हल्के पिंक कलर की शेरवानी में दुल्हे के ड्रेस में काफी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था, वे अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लिए अपनी महंगी परफ्यूम की बॉटल ले अपने ऊपर स्प्रे करने लगता है। तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे देख वे कॉल रिसीव कर लेता है। कॉल रिसीव होते ही रणवीर जी बोले, रुद्र नीचे आ जाइए, शादी का समय हो गया है। रणवीर जी की बात सुनकर रुद्र बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है, जिसे देख रणवीर जी अपने दांत पीस लेते हैं, मगर वे कुछ कहते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रुद्र ने उनकी बात सुन ली है और वे नीचे आता ही होगा। वहीं रुद्र किसी को कॉल लगाता है। उधर से कॉल उठाते ही रुद्र बोला, वे तैयार हो गई तो उसे यहां ले आओ। रुद्र की बात सुनकर उधर का आदमी जी बॉस बोलता है, जिसे सुन रुद्र के चेहरे पर और भी बड़ी मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है और वे कॉल कटकर नीचे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिशा के रूम में, मिशा पूरी तरह से एक हेवी मेकअप के साथ दुल्हन की तरह तैयार हो गई थी। वे भी काफी खूबसूरत लग रही थी। मिशा अपने आप को शीशे में देख बोली, मिस्टर रुद्र सिंघानिया, अब तुम मेरी खूबसूरती से कैसे बचोगे? देखना, तुम बहुत जल्द मेरे आगे पीछे घूमोगे और मैं सिंघानिया विला के साथ साथ बिजनेस की भी दुनिया में राज करूंगी। तभी वहां पूनम आ जाती है और अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देख उसकी नजर उतारते हुए कहती हैं, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, चल अब शादी का मुहूर्त हो गया है। अपनी मॉम की बात सुनकर मिशा मुस्कुराते हुए अपना सर हां में हिला उनके साथ नीचे चली जाती है। वहीं नीचे शादी के मंडप के पास प्रीता, जो कि चेयर पर आराम से बैठी हुई थी, वे जब देखती है कि मंडप के पास फूल नहीं रखे हुए हैं, तो वे अपनी बगल में खड़ी दिशा से कहती हैं, दिशा बेटा, आप वहां से फूल ला मंडप के पास रख दीजिए। दादी जी की बात सुनकर दिशा हां बोल फूल लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वे फूल लेकर वापस आती हैं और वे उस फूल को मंडप पर रखने जा ही रही थी कि उसका लहंगा उसके पैरों में फंस जाता है और वे जैसे ही गिरने वाली होती है, वैसे ही देवांश की नजर दिशा पर पड़ जाती है। देवांश, जो कि मंडप के पास ही खड़ा था, वे तुरंत आगे बढ़ दिशा की कमर को पकड़ अपने करीब कर लेता है। वहीं वे फूल हवा में बिखरते हुए दोनों के ऊपर गिर रहे थे। वहीं दिशा डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं देवांश दिशा की बंद आंखों और उसके डरे हुए खूबसूरत चेहरे को काफी करीब से देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी दिशा को अपने बेहद करीब कर ढेर सारा प्यार करे, मगर अभी वे ऐसा कर नहीं सकता था, सिवाय दिशा को देखने और महसूस करने के अलावा। इसलिए वे दिशा को अपने इतने करीब देख उसे महसूस कर रहा था। वहीं दिशा जब उसे महसूस होता है कि वे नहीं गिरी, तो वे अपनी आंखें खोल देखती है और अपने आंखों के सामने देवांश को देख चैन की सांस लेती है। वहीं देवांश दिशा को देखते हुए बोला, मिस दिशा, आप ठीक है ना? देवांश की बात सुनकर दिशा हां में सिर हिला देती है और देवांश से दूर होने की कोशिश करती है, मगर देवांश ने उसकी कमर को अब भी पकड़कर रखा हुआ था। वे अभी देवांश को अपने आप को छोड़ने के लिए कुछ कह पाती, तभी वहां कामना आ जाती है और दिशा को देवांश से एक झटके में अलग कर दिशा को देख गुस्से में कहती है, तुम जैसी गरीब लड़कियां, तुम्हें बस अमीर लड़कों को फंसाने के लिए बस यही ट्रिक आता है कि किसी तरह उसके करीब जाओ, उसकी बाहों में गिर, उसे अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा ले। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे रहते हुए मैं तुम जैसी लड़कियों को अपने बेटे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। आगे से मेरे बेटे से दूर रहना। अगर गलती से भी मैंने तुम्हें अपने बेटे के करीब देख लिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं दिशा जैसे जैसे कामना की बातें सुनती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वे कामना को समझाते हुए बोली, मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं मुझे, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मैं सच में गलती से ही गिरी थी और मुझे मालूम है मैं गरीब हूँ और आप लोगों के मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ और ना ही देवांश सर के लिए मेरे मन में कोई गलत विचार है, फिर भी मैं आगे से कोशिश करूंगी कि मैं सर के कुछ दूरी पर ही रहूं। दिशा की बात सुनकर कामना बोली, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मैंने तुम्हें दोबारा अपने बेटे के करीब देखा तो मैं तुम्हारी क्या हालत करूंगी, ये मुझे खुद भी नहीं पता। इसके आगे कामना कुछ और बोल पाती। देवांश, जो कब से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, वे कामना को चुप कराते हुए गुस्से में बोला, मॉम बस कीजिए, मिस दिशा ऐसी बिल्कुल भी नहीं, और अभी शादी होने वाली है तो आप इस माहौल को खराब मत कीजिए, शांति से शादी एंजॉय कीजिए। अपने बेटे को गुस्से में देख कामना आगे कुछ भी नहीं बोलती है और दिशा को गुस्से में देख अपनी मॉम प्रीता के पास चली जाती है। वहीं सब ये देख अपना सर नामे हिला देते हैं, क्योंकि कामना की आदत थी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की। वहीं परी दिशा के पास आकर पूछती है, दिशा दी आप ठीक है ना? दिशा अपनी आंखों की नमी छिपा अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं देवांश दिशा के पास आकर बोला, मिस दिशा प्लीज आप माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा, उनके शब्द कड़वे होते हैं पर उनकी इंटेंशन वैसी नहीं थी। इसके आगे देवांश कुछ बोल पाता। दिशा देवांश की बात को काटते हुए बोली, कोई बात नहीं सर। इतना बोल वे देवांश के दूर जा दूसरे साइड में खड़ी हो जाती है, जिसे देख देवांश अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है मगर कुछ बोलता नहीं। तभी सबकी नजर सीढ़ियों से आते रुद्र पर जाती है, जो अपने रौबदार औरा के साथ नीचे आ रहा था। रुद्र को देखते ही सब खुश हो जाते हैं। तभी पंडित जी बोलते हैं, यजमान जल्दी से दूल्हा दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त का टाइम हो गया है। जिसे सुन धीरज जी बोले, हाँ पंडित जी आ रहे हैं दोनों।
वही रुद्र नीचे आ सीधे मंडप पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देख पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पूनम जी मीशा को लेकर आ जाती है।